नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की चीन के कदम को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे दावे निराधार। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक सम्मेलन में प्रतिष्ठित ब्रह्मपुत्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिबंधित उग्रवाद संगठन अल्फा आई से कथित संबंध रखने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। ये गिरफ्तारी असम के तिनसुकिया जिले और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत के 21वीं सदी के निर्णायक सुधार के साथ समर्थन का आह्वान किया। विशेष संसद सत्र के पहले नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के पार। पश्चिम एशिया संकट गहराने के साथ सेंसेक्स में लगभग 1.2% की गिरावट। निफ्टी में लगभग 231 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज मुंबई में। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की चीन के कदम को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे दावे तथा निराधार कथाएं घटने के प्रयास है। इस अखंडता वास्तविक को नहीं बदल सकते कि ये क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो द्विपक्षीय संबंधों को नकारात्मकता लाते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं। नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए चीनी नाम घोषित करने के बाद आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र के हिस्से को काल्पनिक नाम देने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित विज्ञान एवं तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय जीवन का रूपांतरण, भाषा, आस्था और संस्कृति का संरक्षण विषय पर आधारित सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देहरादून स्थित डून संस्कृति स्कूल के ITITI के रजत जयंती समारोह के अवसर पर किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। श्री मेन ने अपने संबोधन में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश एक अनूठा उदाहरण है जहां विकास और परंपरा का संतुलन सह अस्तित्व देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्ध जनजातीय विरासत, विविध भाषाएं और गहरी आध्यात्मिक परंपराएं विकास में बाधा नहीं बल्कि सतत और समावेशी विकास की मार्गदर्शक है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को प्रतिष्ठित ब्रह्मपुत्र गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। प्रतिबंधित उग्रवाद संगठन अल्फा एक से कथित संबंध रखने वाले आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी प्रदान की। ये गिरफ्तारियां असम के तिनसुकिया जिले और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई है। तिनसुकिया पुलिस के अनुसार ये लोग उग्रवाद संगठन को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने और संचार व्यवस्था में मदद करने में शामिल थे। आरोपी कुछ समय से सक्रिय और एक स्थानीय सहयोगी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। सभी 7 आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति अपने दृढ़ साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। नई दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नया इतिहास रचने जा रही है जिससे भूत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा, एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में महिला आरक्षण अति आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। श्री मोदी ने कहा कि पंचायती राज संस्था महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि वर्तमान में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय सार्वजनिक और निकायों में सेवाएं प्रदान कर रही है।
आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही है। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरभूम में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की कड़ी आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बाद भाजपा NRC लागू करने की कोशिश कर रही है। ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही अवरुद्ध करने की अमेरिका की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% की वृद्धि के साथ $102.37 प्रति बैरल हो गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यहां $105.34 प्रति बैरल पहुंच गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष गहराने के साथ घरेलू शेयर बाजार का संविदा सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज कमजोर वैश्विक संकेतों के साथ दोपहर बाद 1% की गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 763 अंक गिरकर 76,787 जबकि निफ्टी 231 अंक गिरकर 23,820 पर कारोबार कर रहे थे। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोंसले का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। कल मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चुनिंदा जिलों में मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। औद्योगिक विकास प्राधिकरण और 24 घंटे के भीतर उद्योग निकायों और निजी इकाइयों से श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करने को कहा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नए निर्देशों के तहत श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है, विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर में। इनमें समय पर वेतन का भुगतान और बिना किसी कटौती के 2 गुना ओवरटाइम वेतन देना शामिल है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए और रविवार को किए गए किसी भी काम के लिए 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने की 10 तारीख तक एक मुश्त वेतन का भुगतान करें और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वेतन पर्ची जारी करें। श्रमिकों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में पिछले 11 वर्षों में खेल के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत में महापंजकीय कार्यालय के उप महानिदेशक विश्वजीत दास के साथ जनगणना 2027 स्वगणना कैसे करें विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।